दोस्तों वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और इस समय आप सुन रहे हैं सफर हम सफर अपने दोस्त अपने हमराही सुप्रीत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है हर मंगलवार की सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और यदि 88.1 एफएम का प्रसारण आपकी पहुंच से बाहर है तब भी आप अपने चहेते कार्यक्रम से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि इसे आप सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के जरिए। आपको सिर्फ जाना है हमारी वेबसाइट www.radio2rdg.com पर और वहां पर सिलेक्ट करना है लिसन टू 2RDJ और हमारा ये कार्यक्रम आपको दुनिया के किसी भी कोने से सुनाई पड़ेगा। दोस्तों मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा हुआ है, जरूरत होती है सिर्फ उसको बाहर लाने की। और मैं ये समझता हूं कि जो हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है बहुत ही टैलेंट अपने अंदर छुपाए हुए है लेकिन कई बार उस टैलेंट को बाहर नहीं लाते हैं, चाहे कोई झिझक होती है या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन टैलेंट बहुत है। मैंने देखा है, कईयों से मिला हूं मैं, और कोई अच्छे साइंसदान हैं, कोई अच्छे लेखक हैं, कोई अच्छे कविता लिखने वाले हैं, कोई अच्छे शायर हैं, कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। सो इतना टैलेंट है हमारे कम्युनिटी में और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी के उस टैलेंट को सामने लेकर आए, उनसे बातचीत करें, उनके मन को जानें, उनकी भावनाओं को जानें और उनकी जर्नी के बारे में जानें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज अपने स्टूडियो में स्वागत करते हुए गरिमा त्रिवेदी जी की। तो गरिमा जी मैं आपका स्वागत करता हूं स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ स्टूडियो में समय बिताने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीत जी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मैं सभी दर्शकों और सॉरी श्रोतागणों को नमस्कार करना चाहती हूँ।
गरिमा हम जब भी बातचीत करते हैं स्टूडियो में तो पहली जो बात हम यही पूछते हैं तमाम अपने आने वाले गेस्ट से कि आप अपनी सिडनी में जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, आपकी जर्नी कब शुरू हुई?
हम लोग यहाँ सिडनी में पीआर लेकर आए थे। अच्छा। परमानेंट रेजिडेंसी लेकर 2006 में।
अच्छा, तो करीब नौ साल हो गए। और कैसी लग रही है जर्नी?
अच्छी लग रही है।
अच्छी लग रही है। हाँ। हिंदुस्तान कहीं मिस कर रहे हैं?
बहुत ज्यादा नहीं।
कई बार होता है क्योंकि जड़ें हमारी दोनों तरफ ही होती हैं, वहां से हम तोड़कर आते हैं या नई जमाने की कोशिश करते हैं। तो आप एक शायरा हैं, तो इस चीज को, ये जो हम हिंदुस्तान छोड़कर आए हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा है कभी आपने?
नहीं,
ऐसा कुछ नहीं लिखा।
नहीं,
लेकिन मैं आपसे सवाल जरूर ये पूछूंगा कि आप किस किस तरह के कविताएं लिखती हैं, मोस्टली रुमानी होती हैं या मोस्टली समाज को लेकर होती हैं या आज के टाइम को लेकर होती हैं?
सुप्रीत जी मैंने लिखना शुरू किया था जब पहली बार मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी।
अच्छा।
तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की भावनाएं रही।
अच्छा।
तो बेसिकली इट्स ऑल फीलिंग बेस्ड फिलोसफी या दर्शन कहा जा सकता है, जो शुरू से ही मैंने देखा लगातार आता रहा है। बार बार वो बैक हुआ है। बीच बीच में कुछ टाइम ऐसा भी निकला जब रोमांस लिखा।
अच्छा।
रोमानी लिखा, लेकिन
बहुत ज्यादा नहीं।
समाज पे लिख सकते हैं, मैं व्यंग नहीं लिखती, राजनीति पे नहीं लिखती, हास्य पे नहीं लिखती।
अच्छा।
मेनली फिलोसफी, दर्शन और या समाज या भावनाएं, जनरल भावनाएं
होती है। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो शायर होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कीड़ा होता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता रहता है और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो फिर लफ्ज बनकर पन्नों पे उधर आती है। तो जो अब आप कह रहे हैं कि आप दार्शनिक लिखती हैं, तो दर्शन तो एक ऐसी चीज है, फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जो कि पढ़ने से ज्यादा समझने की जरूरत होती है। तो क्या चीजें आपको इनकरेज करती हैं दर्शन के ऊपर लिखने के लिए?
कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के विचार।
अच्छा।
समाज में हो रही आपके आसपास की उथल पुथल
या आपके साथ हुए पर्सनल एक्सपीरियंसेस।
पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देखिए अच्छी कविता का जन्म तब होता है जब आप अपने से ऊपर उठ के देख पाते हैं। जब तक आप अपने ही आसपास रहेंगे अच्छी कविता का जन्म नहीं होगा।
जी जी।
तो उसके लिए अपने से ऊपर उठना जरूरी
है। बहुत खूब, ये बहुत जरूरी है।
तो जब आप कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ हुआ, तो आपके साथ कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन उसको आपको दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे भी उससे अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं।
बिल्कुल।
तो उस विचार तक जाना, मैं कोशिश करती हूँ वहां तक पहुंच के कुछ लिख सकूं।
जी
तो
क्यों ना कुछ ऐसे ही दर्शन के ऊपर लिखी हुई आपकी एक हम कविता अपने श्रोताओं को सुनाए।
मैंने बहुत पहले लिखी थी
जी
2001 में।
अच्छा,
तो वो सुनाती हूँ। इसके अंदर बेसिकली तो एक स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच की बात है, लेकिन ये हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। तो आप इसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, लेकिन उसी एक्सपीरियंस को उसी अनुभव को जब आप दूसरों से जोड़ने की कोशिश करते हैं या कोई भी उससे रिलेट कर सके, तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए।
और ये आपने बहुत बहुत खूब बात कही है कि अगर आपने अपने ऊपर ही लिखा तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है।
हाँ, नहीं वो,
और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अपने जो हर्ट हुए हैं आप या आपने जो एक्सपीरियंस किया है सिर्फ उसी को लिख रहे हैं, लेकिन औरों के साथ कैसे जोड़ना। आपने सही कहा कि आप उसको साथ लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं, तो क्यों ना आप अपनी कविता सुनाएं हमें।
जी, इसका कोई शीर्षक नहीं है। तो रंगमंच के नाटक की तरह दृश्य पटल आते हैं एक के बाद, रंगमंच के नाटक की तरह दृश्य पटल आते हैं हर एक के बाद, पर्दा उठता है और पर्दा गिरता है, बस हम तुम बच रहते हैं हर बार। अनवरत चलता है यह क्रम जीवन भर, परिवर्तन प्रक्रिया है जो होती रहती है।
जी,
परिवर्तन प्रक्रिया है जो होती रहती है, परंतु परिवेश में बच रहते हैं बस तुम और हम।
बहुत खूब।
सब बदल जाएगा, जो पात्र आज हैं कल नहीं रहेंगे, दूर तक जाएगा मात्र हमारा संबंध।
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल रंगमंच के साथ जोड़ दिया आपने इसको।
रंगमंच का अर्थ यहाँ पे दुनिया है,
दुनिया
समाज है।
बिल्कुल,
ये एक ड्रामा की तरह ही है हमारे आसपास। तो आप पर यहाँ पे है कि एक अनुभव है
बिल्कुल
जो किसी व्यक्ति ने अपने लेवल पे महसूस किया, लेकिन उस अनुभव के जरिए वो दूसरों तक भी पहुँचना चाह रहा है या दूसरों को भी उससे जोड़ना चाह रहा है।
जी, थोड़ी संजीदा ना हो जाए बातें, तो क्यों ना कुछ गाने अपने श्रोताओं के साथ साझे कर लें। और हम चाहते हैं कि जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं स्टूडियो में उनकी पसंद के हम कुछ गाने चलाएं। तो कोई गाना आप शेयर करना चाहेंगी हमारे श्रोताओं के साथ?
जी, एक गाना है लंदन ड्रीम्स का, शोला शोला
शोला शोला।
अच्छा, गाना थोड़ा लाउड म्यूजिक है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े लाउड म्यूजिक को हटा दें तो आप देखेंगे गाना थोड़ा पोएटिक है,
इसीलिए आपको पसंद है।
जी, जी। सिर्फ शब्दों को देखें तो यस, इट इज पोएटिक।
तो आइए दोस्तों, गरिमा जी की पसंद का हम ये पहला गाना सुनते हैं। गाने के बोल हैं शोला शोला और इसे हमने लिया है फिल्म लंदन ड्रीम्स से।
अपनी नजर के आगे जब आएगी मंजिल ही पहले पल के जब काएगी ठोकरों में बात हो तो कंकरों की मात हो जीत भी तेरे साथ हो समझेगा जहाँ शोला 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 है तू खोया है कहाँ रख दे हथेली पे अंगारे तभी समझेगा जहाँ
इस समय हम बातचीत कर रहे हैं गरिमा जी के साथ जो कि आज हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने समय निकाला। गरिमा जी एक पोएटेस हैं, कविताएं लिखती हैं और यहाँ पर इन्होंने काफी मुशायरों में हिस्सा लिया है, तो उनकी उस जर्नी के बारे में भी अब उनसे बातचीत करेंगे कि गरिमा जी एक एक हमेशा शायर की तमन्ना होती है कि वो अपने ऑडियंस तक पहुंचे किसी तरह से, तो आप समय समय पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर अलग अलग मुशायरों में या शायरी की जो महफिलें होती हैं उनमें जाती रही हैं, तो कब से आप जाती रही हैं और कैसे आपका इस तरफ आपने इसको कैसे ढूंढा, लोग आप तक पहुंचे या आप लोगों तक पहुंचे?
सुखप्रीत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि शादी के बाद करीब 2006 में मैंने आखिरी कविता लिखी थी, शायद 2005 में।
अच्छा,
उसके बाद बीच में 6-7 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा।
गुड, शादी में मतलब इतने व्यस्त हो?
हाँ, शादी तो मेरी 2000 में हो गई थी।
अच्छा।
लेकिन 2005 में मेरी बेटी हो गई थी।
अच्छा, पहली तो उसके साथ बिजी हो गई।
तो उसके साथ बिजी हो गई, समय नहीं मिला, कुछ मन भी नहीं किया, लाइफ में आप इधर उधर बिजी हो जाते हैं। इस बीच यहाँ आना हो गया, 2006 में मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ आ गए थे, तो लाइफ की जीवन की भाग दौड़ में इतना समय नहीं मिला, या ध्यान भी नहीं दिया, कुछ सब कुछ ही था मिला जुला। लेकिन जब यहाँ आ गए तो 2012 में मेरी एक फ्रेंड है यहाँ सिडनी में, उसने मुझे कहा कि क्योंकि उससे पहले किसी को पता नहीं था मैं लिखती हूँ, सिर्फ अपनी डायरी में अपने घर में।
हाँ, वही वही, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हुनर को जरूर बाहर लाना चाहिए, कि हुनर को छुपा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप दुनिया के सामने कैसे आती अगर आपकी सहेली ना लाई होती आपको।
तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि रेखा राजवंशी जी हैं सिडनी में, जो इलासा चलाती हैं, कि वहाँ पे हो रहा है एक कवि सम्मेलन, तो वहाँ अगर तू लिखती है तो चल।
जी।
तो मैंने बोला मैंने बहुत साल से लिखा नहीं है, मैं इतना लिखती भी नहीं हूँ, इतना अच्छा नहीं है मेरा। तो वो कहती कि नहीं, तू फिर से शुरू कर और तू कर सकती है। तो वो मुझे पहली बार वहां लेके गई, तब से लेके अब तक हर साल जब भी वहाँ कुछ होता है वो मुझे निमंत्रण देते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ।
नहीं नहीं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप अच्छा लिखती हैं या नहीं लिखती है। और यही झिझक होती है हर एक के अंदर जिसके अंदर हुनर होता है, कि पता नहीं दुनिया क्या कहेगी। और अब आप 2012 से लगातार जा रही हैं और सुनने वाले उसको पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हुनर था आपने जो आप छुपा के रखी हुई थी।
जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो नहीं नहीं, मैं और यही इनफेक्ट मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करता रहता हूँ कि रुकिए नहीं, अपने आप को रोकिए कभी भी नहीं, टैलेंट को बाहर आने दीजिए, जब तक वो ब्लॉजम नहीं करेगा फैलेगा नहीं, कैसे पता लगेगा कि आप कितना कुछ अपने अंदर छुपाए बैठे हैं, उस लावे को दबाए नहीं। तो अच्छा, तो वो आपका शायरी का दौर शुरू हुआ, फिर से आपने लिखना शुरू किया उस समय?
हाँ, उसके बाद मैंने कई कविताएं लिखी।
अच्छा।
बहुत ज्यादा अभी भी नहीं लिख पाती हूँ, जितना समय मिलता है, जैसे समय मिलता है, जैसे विचार आते हैं उसी हिसाब से। लेकिन हाँ फिर से शुरू किया और मुझे खुशी है इस बात की, और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी उस सहेली को धन्यवाद भी करना चाहूंगी।
तो आप उसका नाम भी ले सकती हैं, ऐसी बात नहीं।
अनु छाबड़ा
ना ना, बहुत अच्छी बात है ये कि किसी ने आपको इनकरेज किया। मेरे ख्याल उनका धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है कि या जो कि जानती थी आपके अंदर हुनर है और वो उसको बाहर लाना चाहती थी। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो एक आप कह रही थी 6 साल का अंतराल आया बीच में, ठीक है,
तकरीबन।
तो एक उसको राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं कि जो राइटर होता है उसके एकदम से ब्लॉकेज आ जाती है, वो लिख नहीं पाता है। तो क्या वो सिर्फ आपका पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो था, या कोई ब्लॉक भी आपको लग रहा था कि आ गया अब आप लिख नहीं पा रही है?
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि विचार नहीं आए, विचार हमेशा रहे,
लेकिन और उसको कागज पे नहीं उतारते।
कागज पे कभी कभी 2 शब्द लिख भी दिए तो इतना समय नहीं मिला कि उस पौधे को जो अभी जिस बीज को अभी डाला है उसे अंकुरित करके बड़ा कर सके, उसके लिए समय चाहिए होता है। किसी भी विचार को सींचना पड़ता है,
बिल्कुल।
तो सींचने का समय नहीं मिला तो 2-4 शब्द कहीं लिखे फिर इधर उधर हो गए, ऐसा रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विचार नहीं आए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई चीज है, आप अगर सोच सकते हैं तो अपने विचारों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
बिल्कुल, वो तो आएंगे ही।
अब उनको सींचना या ना सींचना आपके हाथ में है।
जब आप सींचना कहती हैं तो क्या आपको मतलब है कि उसको लयबद्ध कर पाना, उसको कविता का रूप दे पाना,
उसको एक शैली में ढाल पाना? क्योंकि विचार तो बहुत ही कच्चा चीज है, बहुत ही रॉ फॉर्म में है। तो जब उस विचार को सींचने से अर्थ है कि आप उसको बड़ा करें, उस विचार की हर थॉट अपने आप में एक एवोल्यूशन प्रोसेस होता
है।
सो फ्रॉम बेबी थॉट टू फुल मैच्योरिटी इट नीड्स सम एफर्ट
फ्रॉम
राइटर्स।
जी हाँ।
तो अगर वो नहीं कर पाई मैं उतने टाइम तक, तो उसे ब्लॉकेज तो नहीं कहेंगे?
नहीं, ब्लॉकेज नहीं, हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि कच्चे विचार होते हैं
जी,
तो उनको पकाने में समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है गरिमा कि आपके विचार आते हैं और एकदम से वो कविता का रूप ले लेते हैं,
ऐसा भी टोटल, वो अब होने लगा है,
अब होने लगा है। अच्छा,
क्योंकि अब मैं फ्लो में दोबारा आ गई। एक टाइम था जब कॉलेज में थी तब होता था,
अच्छा,
तब खड़े खड़े कविता बन जाती थी दिमाग में,
अच्छा,
और अगर नहीं लिखा है उसी समय तो वो लॉस्ट है। अभी वो फिर से होने लगा है, तो मुझे लग रहा है कि इट्स कमिंग बैक। बट बीच में वो टाइम था जब मैंने कुछ नहीं लिखा या लिखा तो बहुत कच्चा था, इतना अच्छा नहीं था, तो उसे मैं ब्लॉकेज नहीं कहती
जी।
लेकिन हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां या बाकी चीजों ने
थोड़ा सा रुकावट डाली। तो क्यों ना हम आपकी एक और कविता सुने, अपने श्रोताओं को सुनाए।
जी, दर्शन पे तो मैंने सुनाई अभी, ये भी बहुत पहले की ही कविता है, शादी से पहले की है।
अच्छा, तो मतलब कोई फर्क है दोनों में? शादी से पहले की कविता,
शादी से पहले मैं रोमांटिक लिख लेती थी।
अच्छा, अब नहीं,
अब
रोमांस खत्म हो गया?
कम हो गया,
बट गया।
जी, तो ये एक रोमानी कविता है
जी,
उसका शीर्षक है अब की बार जब मिलो।
वाह।
तो मेरी चोटी में गूंथ देना अपनी उंगलियों के छोर, मेरी चोटी में गूंथ देना अपनी उंगलियों के छोर, समेट लेना छाती में आंखों के पोर, चेहरे पर फैले केश हटा देना हाथों से, फिर पूछना प्यार से कैसी हो तुम, छू लेना कपोल मेरे, चूमना ललाट को, कपोल मतलब गाल और ललाट माथा, तो छू लेना कपोल मेरे, चूमना ललाट को, अब की बार जब मिलना नैनों को घेर लेना, स्पर्श देना श्यामली और देखना सुहासिनी, फिर पूछना प्यार से कैसी हो तुम।
बहुत खूब, और इतनी शुद्ध हिंदी, और मेरे को तभी मेरे ख्याल शायद आपने बीच में मतलब भी बताने की कोशिश करी कपोल और ललाट पर
जी।
बहुत खूब लिखा आपने गरिमा, और इसी रोमानियत से जुड़ा हुआ क्या गाना भी आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे क्या?
जी, एक गाना है क्रिश 3 मूवी से,
अच्छा,
दिल तू ही बता।
बहुत प्यारा गाना है ये, और कोई खास वजह इसे चुनने की?
नहीं, ऐसी बहुत खास वजह, बस इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है और इसके शब्द बोल बहुत अच्छे हैं।
जी, तो आइए दोस्तों, गरिमा जी की पसंद पर हम सुनते हैं ये गाना फिल्म क्रिश 3 से, दिल तू ही बता। दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं सफर हम सफर अपने दोस्त अपने हमराही सुप्रीत के साथ। आज हमारे गुफ्तगू सेक्शन में दोस्तों आई हुई हैं गरिमा त्रिवेदी जी जो कि एक बहुत ही अच्छी शायरा हैं। तो गरिमा जी फिर से आपका स्वागत है वापस। उम्मीद है दोस्तों को भी ये गाना उतना ही पसंद आया होगा जितना आपको ये पसंद है। हम आपकी जर्नी की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि बीच में एक ब्लॉक आ गया था 6 साल का और 2012 से आपने फिर से लिखना शुरू किया जी। तो आपने क्या महसूस किया 2006 से पहले जो आपने लिखा और उसके बाद 2012 के बाद जो आपने लिखा, किस तरह का उसमें डिफरेंस आया?
क्वालिटी इम्प्रूव हुआ जी। लिखने का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ और विचारों का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ।
अच्छा,
क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपके जीवन के अनुभव के आधार पे लिखते हैं। तो जब आप 16-17 साल की उम्र में कुछ लिख रहे हैं तो वही अनुभव हैं जो कागज पे उतर रहे हैं, और जब आप 30 साल के बाद कुछ लिख रहे हैं तो वो जो समझ की मैच्योरिटी है वो आपको अपनी रचनाओं में
दिखाई देती है, झलक आती है। तो मैं इसी में इनफेक्ट आपसे सुनना चाहूंगा, जो आपने 2006 से पहले लिखा
जी।
और जो 12 के बाद लिखा, वो दो का अगर कोई कंपैरिजन हो पाए तो हम जान पाएंगे कि दर्शन के ऊपर आप लिखती हैं, दर्शन या रोमानियत के ऊपर अगर आपने कोई लिखा है। इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगा कि 2012 के बाद का रोमानी कैसा रहा आपका?
रोमानी नहीं रहा,
नहीं रहा।
2000 जी जी बिल्कुल, क्योंकि 2012 के बाद या तो मैंने स्पिरिचुअल लिखा,
अरे अच्छा,
या दर्शन पे लिखा।
अच्छा,
रोमानियत कहीं खो।
तो मिस्टर त्रिवेदी से बात करनी पड़ेगी
जी, आप बिल्कुल उनसे पूछिए।
एक इंटरव्यू उनके साथ भी करना पड़ेगा
जी, वो कि क्या अच्छे से बता पाएंगे।
तो अच्छा, तो दर्शन के ऊपर आपने 6 से पहले तो लिखा ही है आपने
जी,
और 12 के बाद भी लिखा। तो लेट्स सी कि किस तरह का कंपैरिजन कर पाते हैं आप, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे क्या अंतर आया?
देखिए, ये दो कविताएं मैं इस समय, एक तो कविता की लंबाई जो है वो लंबी हो गई है।
अच्छा,
एक तो ये अच्छा, फर्क आया है कि अब मैं विचार को ज्यादा बड़ा सींच पाती हूँ।
अरे वाह,
वो तब हो पाता है जब आप कई विचारों को एक साथ जोड़ सके। तो एक तो मुझे लगता लग है ऐसा कि वो होने लगा
पहले
है।
छोटी लिखती थी,
पहले छोटे में ही कुछ मुश्किल से 10 या 12 लाइनों में एक विचार खत्म हो जाता था, अभी वो लंबा पैराग्राफ तक पहुंच गया है। तो एक तो वो अंतर आया है।
अच्छा,
तो विचार को मैंने थोड़ा, अब वो जो सींचा है वो पौधा थोड़ा बड़ा होने लगा है। तो एक तो वो अंतर आया है, दूसरा अब मुझे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा व्याकरण की समझ आने लगी है।
अच्छा,
थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले जो लिखती थी वो सिर्फ विचार हैं, वो बस लिख दिए
जी,
एक के बाद एक लाइनें आती गई। हाँ, कोई सोचा नहीं कि अच्छा लयबद्ध होना चाहिए।
अच्छा,
अभी मुझे व्याकरण का समझने का मन भी करता है।
हाँ,
और जितना मुझे समझ आया है उतना मेरे को लगता है कि मैं उसको अपनी रचनाओं में
ढाल भी लें आप
जी।
तो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग बिफोर 2006 एंड देन आफ्टर 2012
जी,
जब रोमानियत खत्म हो गई।
जी, तो एक 1999 में कविता लिखी थी
जी,
उसका शीर्षक था सामना। कि क्या हो जब पता चले हमें कि हम वो नहीं जो दिखते हैं, हम वो नहीं जो सोचते हैं
जी,
और एक व्याकरण का अंग बन जाने के बाद बाहर भी आ ना सके
जी,
और लगे कि कहने को कुछ बचा नहीं और स्वीकार भी कर न सके मौन। तो फिर तो
ये था उस समय का
प्रश्न था।
हाँ,
वो बस इतने ही शब्दों में
ढल गया था,
खत्म हो गया। जी, और मुझे लगा बहुत अच्छा है,
नहीं
तो अच्छा है, मैं लगा था कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, इस विचार को अगर मैं दोबारा लिखूं इसी विचार को तो बहुत अच्छा, मतलब उससे बेहतर लिख सकती हूं।
जी
जी, और ये एक कविता है वृक्ष की मांग। अब ये लंबी है, यदि
कोई बात नहीं,
अनुमति दें।
नहीं, नहीं, जरूर जरूर प्लीज।
तो ये मैंने 2014 को लिखी थी।
अच्छा,
पिछले साल ही है। तो इसका शीर्षक है वृक्ष की मांग। तो इसके अंदर है सांकेतिक संवाद है जो वृक्ष पृथ्वी और नदी के बीच है।
अच्छा,
तो उसके माध्यम से कवि जो है वो लोगों को ये कहना चाह रहा है कि हम सभी अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं
जी।
अक्सर हमें लगता है कि हम रह गए और दूसरे को तो बहुत कुछ मिल गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचें। तो ऐसे ही एक विचार को डाला है कि एक दिन मन में थी बात बड़ी, तरुवर के मुख से निकल पड़ी, ओ रवि के कर्मठ घोड़े मुझको आलिंगन में ले ले। तू सूर्य लोक उज्जवल आदर, मैं पृथ्वी का मन का जाकर, मैं मांग रहा हूँ प्रेम सखा, हाय यह मुझको नहीं मिला। लदा हुआ फल पुष्पों से मैं खड़ा हुआ हूँ बरसों से, तू दूर देश का गामी है, प्राकृत जीवन का स्वामी है, पदचापों की यह चाप चाप निष्फल गाता तू ऊषा राग, मैं मांग रहा निज अंचल पर तेरी किरणों का तेज प्रखर।
वाह।
तो यह वृक्ष ने जब कहा और नदी ने जब वृक्ष की यह बात सुनी तो नदी की प्रतिक्रिया है कि सुनकर यह बात सुहासे की लहरें नदिया की बोल उड़ी, ओरे मेरे छाया उदार क्यों कुंठित है मन जार जार, तू गगन चूमने जाता है और प्यार वहीं से पाता है, जब सूरज दिन भर जलता है तब तेरा गौरव बढ़ता
बहुत
है।
बहुत
अब वो अपनी स्थिति समझा रही है कि उसको भी लगता है कि वो रह गई है, उसको कुछ नहीं मिला। अच्छा। है कि जरा मुझको देख यहाँ पगले, तेरा अंचल तो रिक्त पले, मैं कुछ मूक शिलाओं के नीचे मेरी धारा रुक जाती है, निर्भीक समर लहराता है मेरी ग्रीवा झुक जाती है, एक नीरव मन आतुर अकुला मैं किससे मांगू प्यार भला।
वाह।
सहसा एक गर्जन हुआ और धरती में कंपन हुआ, सरिता में उफन उफान उठा और तरुवर भी दुर्धर झुका। अब जब पृथ्वी तरुवर और नदी दोनों की बात पृथ्वी सुनती है तो उसकी प्रतिक्रिया है।
अच्छा।
कि सुन बात मेरी मेरे सानी, पृथ्वी की थी सहजवाणी, क्या वह कहती है कि इस सूनेपन की राग ललक तू किसे किसे समझाएगा, अर्ध सत्य यह मलिन करुण तू किस किस को भरमाएगा, मैंने तुझे संवारा दे अपने जीवन की रूप विभा, तेरे दुर्बल की मैं साथी लेकिन तू सब भूल चुका, मुझसे तेरा अंकुर फूटा मैंने ही तुझको दी जड़ता, मेरे अनुराग की छाया से तू आज तलक है खड़ा हुआ।
बहुत खूब।
और नदी के तटों को मैं आकार बताती हूँ प्यारे, सागर तक कैसे जाना है वह राह दिखाती हूँ प्यारे, चट्टान काट और मार्ग बना सरिता ताकत मुझसे पाती, कलकल करते उस पानी को मैंने ही दी अपनी छाती।
वाह, वाह।
पर दोष ये तेरा नहीं है जगत की माया यही है, कि अब यहाँ पे दर्शन है कि पर दोष ये तेरा नहीं है जगत की माया यही है, प्राप्त करता है जो अक्सर भूल जाता है, चेतना के द्वार पे अंकुश लगाता है, कह रही यह तेरी जननी सुन जरा यह बात मेरी, हम परस्पर प्रेम की माला बनाते हैं और संस्कृत खेल यह मिलकर चलाते हैं, ज्यों श्रृंखला की कड़ियां साथ रहती हैं हम पराई पीर का सेतु सजाते हैं।
वाह।
हम पराई पीर का सेतु
बहुत
सजाते हैं।
बहुत खूब। बहुत जी, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही थी उस समय कि किस तरह से आपके विचारों ने और उबाल लिया है और आप दर्शन की तरफ भी झुकी हैं और कुछ विचारों को और भी आपने जैसे बहुत लंबा इस कविता में लिखा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये कविता सुनाई, हमारे साथ साझी करी, क्योंकि एक आप अपने अंदर का कवि जो है उसको बाहर लेकर आई हैं और हमारे साथ साझा किया है उसको। तो फलसफे की बातें तो बहुत हो रही हैं, कुछ मनोरंजन भी हो जाए श्रोताओं के लिए।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो कोई और गाना आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे?
एक गाना है नैन परिंदे,
नैन परिंदे
लफंगे परिंदे मूवी का, तो यदि आप वह लगा दें तो बहुत अच्छा।
अच्छा, उसमें भी फलसफे की बातें हैं।
वो जैसी कविता सुनाई उस हिसाब से इसके बोल बहुत अच्छे हैं और जैसे कि बताया पोएटिक
सॉन्ग है। तो आइए दोस्तों, गरिमा जी की पसंद का अगला ये गाना हम सुने फिल्म लफंगे परिंदे से, और इसके बोल हैं नैन परिंदे।
पगले दो नैन, नैन परिंदे जागे दिन रे, नैन परिंदे पगले दो नैन, नैन परिंदे जागे दिन रे, पंख झटक ये उड़ जाए मान में खो जाएंगे, मगरूर बड़े बन जा रे नैन परिंदे पगले दो
दोस्तों, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11 बजे की तरफ बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि हमें अलविदा कहना होगा। आज स्टूडियो में हमारे साथ गरिमा जी आई हुई हैं और मन तो नहीं चाहता कि उनके साथ ये बातचीत का जो सिलसिला है ये टूटे, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लेकर आई हैं। लेकिन समय बलवान होता है गरिमा, जाना तो होगा हमें, लेकिन अभी हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपसे कविताएं भी सुनेंगे, एक और कविता जाने से पहले सुनेंगे और एक और गाना आपकी पसंद का जरूर सुनेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि आपका रुझान, आपका मोड़ जो है, क्योंकि हर समय पर मोड़ आते रहे हैं कविता लिखने में, किस तरफ को जा रहा है?
ऐसे तो मैंने आपको पहले ही कहा अपनी रचना के माध्यम से कि यथार्थ अलग होता है, सोचना और चाहना और आशा करना, प्रयास करना अलग होता है, परंतु जहां तक अभी मैं समझ पा रही हूँ दर्शन की तरफ जा रहा है,
दर्शन की तरफ जा रहा है।
दर्शन शुरू से ही रहा, शुरू से ही मैं जब रुमानी लिखती थी उसमें भी कहीं ना कहीं दर्शन अपने आप ही आ जाता था, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं व्यंग नहीं लिख पाती कि अपने आप ही वो उस तरफ मुड़ जाता है
जी।
तो वो है, और या फिर अब अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा है, तो वो अब एक मिला जुला संगम सा मुझे दिखाई देता है एट दिस मोमेंट।
और आपको लग रहा है कि जो वो 6 साल का गैप था वो शायद अब ना आए, अब आपको समय मिल पा रहा है, आप अपनी रचनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को लेखनी में उतार पा रही है?
हाँ, अब समय मिल रहा है और होपफुली आगे मिलता रहेगा,
आगे भी मिलता रहेगा,
बच्चे बड़े हो रहे हैं तो समय मिलना चाहिए
समय में। मेरा ख्याल है कि किसी ने एक बार मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई अगर ये कहता है कि मैं बिजी हूं तो वो गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। जी हाँ, और मेरे को वही लग रहा है कि 2012 के बाद से आपकी उस सहेली की वजह से आपके अंदर वो जज्बा पैदा हुआ दोबारा लिखने का, तो उम्मीद है कि वो जारी रहेगा। और हम आपसे और भी कविताएं सुनना चाहेंगे, आपके और भी रंग देखना चाहेंगे कविताओं के। आपने उनको बांध लिया है जैसे कि दर्शन में या स्पिरिचुअलिटी में, या हम चाहेंगे कभी आप काव्यंग भी सुने, हो सकता है वो मोड़ भी आए जिंदगी।
एक हास्य कविता मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिखी थी, बट वो ऑन डिमांड थी।
अच्छा वो अपने मन में नहीं आई थी?
नहीं, अपने आप तो हास्य नहीं आता, पीछे ही इलासा में ही होली पे हास्य हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हास्य होना चाहिए। मैंने उनको कहा मैं हास्य नहीं लिखती, तो कहते कि नहीं, किसी ने जोर दिया कि नहीं आपको हास्य लिखना चाहिए क्योंकि वो हास्य का ही है, हास्य कवि सम्मेलन ही है। तो मुझे भी लगा कि ओके लेट मी एक्सप्लोर अदर साइड ऑफ,
बिल्कुल बिल्कुल, वही बहुत जरूरी है जो आपने अभी कहा कि लेट मी एक्सप्लोर अदर साइड ऑफ मी, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम हम कहाँ पहुंच पाएंगे। कई लोग अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो अच्छे सिंगर बन जाते हैं।
एग्जैक्टली,
किशोर कुमार साहब शायद वो एक्टर बनने आए थे, एंड ही इज अ लेजेंड नाउ।
प्राण जो है वो हीरो बनने आए थे,
वो हीरो बनने आए थे,
एंड इज अ वेरी गुड विलेन।
या यू नेवर नो कि आपने जब आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया तो आप किस तरफ किस धारा से मुड़ गए। नेचर आपको पसंद है?
नेचर, प्रकृति, हाँ
बहुत
बहुत,
और वो भी कहीं ना कहीं आपकी झलकती है, मैंने देखा है। आपकी कविता इससे पहले जो आपने सुनाई थी जहाँ पे आपका एक डायलॉग था धरती नदी और पेड़ के बीच में, और उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ढाला था, तो और आपको क्या अच्छा लगता है लिखने के अलावा?
पढ़ना।
पढ़ना किस तरह का? दर्शन?
नहीं, सब कुछ।
सब कुछ, अच्छा। हिंदी, इंग्लिश?
अच्छा, हर तरीके का म्यूजिक।
हर तरह का म्यूजिक, दैट्स गुड, वही वो टेस्ट एक आर्टिस्ट वाले हैं। और हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ती हैं आप? कोई नॉवल, कविताएं, एनीथिंग?
एनीथिंग, एनीथिंग।
अच्छा अच्छा,
आर्टिकल, नॉवेल्स, मैगजीन्स, गॉसिप?
अच्छा, वो भी चलता है।
हाँ, दर्शन तो हर चीज में है।
बिल्कुल, गॉसिप में भी है।
बिल्कुल है।
उस पे एक कविता सुनना चाहेंगे कभी आपसे।
गॉसिप पे अभी लिखा नहीं है।
अभी लिखा नहीं है,
लिखूंगी तो जरूर।
तो जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक और कविता दोस्तों को सुनाएं, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि कौन सा गाना साझा करना चाहेंगे हमारे दोस्तों के साथ।
एक गाना है खोया खोया चांद मूवी से,
जी
उसका बोल भी खोया खोया चांद,
खोया खोया चांद, सोहा अली खान की फिल्म,
सोहा अली खान की मूवी है, और ये भी पोएटिक सॉन्ग,
पोएटिक सॉन्ग है। तो पोएटिक सॉन्ग को सुनाने से पहले कोई ना आपकी एक छोटी सी कविता और सुन ले हम, और उसके बाद हम अलविदा कहें।
छोटी सी
कोई भी?
ओके, अच्छा, तो ये कविता भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में सुनाई थी इलासा के मंच पे, जब ये पहली कविता है जो मैंने इलासा के मंच पे सुनाई थी।
अच्छा,
तो ये भी स्पिरिचुअलिटी और दर्शन का मिला जुला
रूप है,
मिला जुला रूप है। इसका शीर्षक है कथन। मुझे कहना है जीवन से, कहना है कि मैं अर्थहीन नहीं हूँ, कुछ तो बात है मुझ में जो अब तक विलीन नहीं हूँ। कहना है कि मैं ढूंढ लूंगी अपनी दिशाएं, मेरे कर में सिमटी हैं सभी अभिलाषाएं, मेरा रास्ता लंबा है और अनुभव छोटा, बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने लीक का पोथा। और कहना है यह भी कि रंगीले मेले का मैं एक अपूर्ण हिस्सा हूँ, भीड़ में रहती हूँ और एकांत बसती हूँ, बूंद बूंद जुड़कर मैं हिस्सा पूर्ण कर लूंगी, कुछ रंग खरीद बाजार से उसे संपूर्ण कर लूंगी। मुझे कहना है मृत्यु से, कहना है कि मैं अर्थहीन नहीं हूँ, कि पहले जीवन से कहा था, अब मृत्यु से, क्योंकि हमारा संबंध दोनों से है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे कहना है मृत्यु से कि मैं अर्थहीन नहीं हूँ, कितनी ही भटकूं इधर उधर तुम्ही में विलीन हूँ। कहना है कि उस बिंदु से इस बिंदु तक नाचती हुई पलती हूँ, यानी कि जन्म से मृत्यु तक,
जी।
कि मुझे कहना है कि उस बिंदु से इस बिंदु तक नाचती हुई पलती हूँ, सपनों का तार है संभावना पर चलती हूँ, अभी अनुभव छोटा है और रास्ता लंबा, अंत काल से अंतहीन तक बहता रहता पोथा। और कहना है यह भी कि पहुंचने से पहले मुझ तक आने का संकेत देना, कि ये मृत्यु से कहा जा रहा है कि पहुंचने से पहले मुझ तक आने का संकेत देना, तैयारी कर सकूं चलने की चित्त सजीव सचेत देना। और मैं कह रही हूँ दोनों से, यानी कि जीवन और मृत्यु दोनों से, कि मैं कह रही हूँ दोनों से, जीवन और मृत्यु के कोनों की बीच की भूमि का आधार मेरा है, नियति की ठोस दीवार पर जगमगाता आशा का द्वार मेरा है, और यह भी कि कल मैं जहाँ थी वहाँ आज नहीं हूँ, सशक्त असीम धारा का यह प्रवाह मेरा है।
वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं हैरान हूँ कि आप अपने आप को छुपा कर क्यों रखे हुए थे। इतना हुनर, इतना टैलेंट है आपके अंदर, और इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं आपने, सुनाई हमारे साथ, साझी करी हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गरिमा कि आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ अपनी कविताएं, अपना जीवन साझा किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का।
बहुत बहुत धन्यवाद सुखप्रीत जी मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे अवसर प्रदान करने का कि मैं अपनी रचनाएं आपके साथ और आपके माध्यम से श्रोताओं के साथ शेयर कर सकूं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जाते जाते दोस्तों, गरिमा जी की पसंद का यह गाना फिल्म खोया खोया चांद से, आप लीजिए इस मीठे से गाने का मजा। हम लेते हैं आपसे विदा, आपसे फिर मुलाकात होगी आज के दिन, आज के समय अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुप्रीत की तरफ से सलाम, नमस्ते।
आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान, गर्दिशों में है सितारे, बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली।
खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल।
जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली।
जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं,
इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं।
क्यों तू आज इतना वहशी है, मिजाज में मजाज है गमे दिल,
अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिल भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रात तो फिर सहम सहम
संभल संभल सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल।
क्यों खोए खोए चांद की फिराक तलाश की,
दिल को समझाना कह दो क्या आसान है, दिल तो फितरत से सुन लो ना बेईमान है, ये खुश नहीं है जो मिला बस मांगता ही है चला, जानता है हर लगी का दर्द ही है बस एक सिला।
कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला। जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला।
क्यों नए नए से दर्द की फिराक में तलाश में उदास है दिल,
I'm not afraid.